ठीक है। अब दो आयतें आ रही हैं, इन दो आयतों का मैं पहले आपको बता दूंगी तो आपको बहुत अच्छी तरह फिर इंशाल्लाह समझ आ जाएंगी। पहली आयत वो है कि जब औरत को आदमी तलाक देता है लेकिन रुख्सती नहीं हुई होती, रुख्सती ही नहीं हुई तो फिर उसके मेहर का क्या होगा। एक्चुअली ये दोनों आयत मेहर के मुतालिक हैं कि मेहर कितना देना। सोचेंगे मेहर को इन आयत में फरीदा कहा गया, फरीजा है ये, फर्ज जिसको कहते हैं, जैसे नमाज फरीजा है आपके ऊपर फर्ज है ना पढ़नी, इस तरह मेहर फरीजा है आदमी के ऊपर, फर्ज है देना, औरत का हक क्या ये। लेकिन इसको बिल्कुल कुछ अहमियत नहीं दी जाती। यहां पे बताया गया कि किसी औरत से तुमने शादी कर ली पहली 236 आयत में और उसको तलाक दे दी बगैर रुख्सती के, तो फिर कितना मेहर देना। और दूसरी आयत के अंदर है कि अगर औरत के साथ रुख्सती नहीं हुई और उसके साथ मेहर मुकरर किया हुआ है तो फिर उसको कितना देना मेहर तलाक के बाद। तो ये थोड़ी सी ब्रीफली मैंने आपको इसलिए बता दिया कि अब आप, क्योंकि आयतें थोड़ी थोड़ी लंबी हैं तो आप उसमें लॉस्ट ना हो जाएं। यानी पहली 36 to 36 में जब मेहर मुकरर नहीं है फिर तलाक पे क्या देना है ऐसी लड़की को जिसको इस रुख्सती नहीं हुई, और नंबर 2 में जब मेहर मुकरर है और लड़की को रुख्सती नहीं हुई और तलाक हो गई तो फिर क्या देना। बस ये है असल में इनमें। ला जुनाहा अलैकुम, नहीं कोई गुनाह तुम पर, इन तल्लकतुमुन निसा, अगर तुम तलाक दे दो औरतों को, मालम तमस्सुहुन्ना, जिनको तुमने तुमने अभी छुआ नहीं है। यानी छुआ नहीं है मतलब क्या, ये रुख्सती नहीं हुई, कोई जिस्मानी ताल्लुक कायम नहीं हुआ। वैसे तो तलाक देना कोई बहुत कुछ ऐसी बात अच्छी नहीं है, लेकिन बहुत दफा ऐसी चीजें हो जाती हैं कि मसलन निकाह हुआ, अब लड़के लड़की ने आपस में बातचीत शुरू की, अब बातचीत होते होते लेकिन आप लग रहा है कि ये इनकी बन ही नहीं सकती, लगता है कि ये अगर रुख्सती हो गई ना तो और खराबियां पैदा होंगी, ये रिश्ता निभेगा नहीं अब। या बहुत सारे वाकयात हो जाते हैं ऐसे कि अब लड़के ने निकाह तो कर लिया लेकिन उसको अब कोई और पसंद आ गई है, अब वो किसी और में इंटरेस्टेड हो गया, अब इसको इसमें इंटरेस्ट नहीं है, अब घर वाले जबरदस्ती करके फिर उसके बाद रुख्सतियां करा देते, नहीं नहीं अब तो तुम्हारा निकाह हो गया, अब तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। अब क्या होता है फिर उसके बाद, फिर घर तबाह होता है और वो उसके साथ भी नहीं बसता और फिर वो लड़की को और ज्यादा बड़ा नुकसान हो जाता है। तो इसमें कोई हरज नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ इतनी बड़ी इसको चीज समझी जाती है कि अगर किसी लड़की का निकाह हुआ था और उसके बाद खत्म हो गई, तलाक हो गई, तो इसको इतना बुरा समझा जाता है कि उस पर भी नहीं कोई उसे शादी करना, या कि उसके ऊपर धब्बा लग जाता है, एक स्टिग्मा है उसके ऊपर। ये इतनी बुरी बातें, जब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कोई गुनाह ही नहीं तुम पे कि अगर तुम तलाक दे दो, यानी आदमी के लिए गुनाह नहीं तो औरत जो बेचारी एक विक्टिम बनती है उसके ऊपर कैसे हरज हो गया, कोई कोई गुनाह हो गया उसके ऊपर, क्या उसका क्या उसके अंदर ऐसी खराबी आ गई कि अगर उसका निकाह हुआ था, रुख्सती तो हुई ही नहीं है। चलो एक रुख्सती वाले का इंसान कह सकता है कि इसने एक शौहर दीदा है, इसने एक ताल्लुक इसका हुआ है, ये कंवारी नहीं रही अब, लेकिन जिस बिचारी की तलाक हो गई और अभी उसकी रुख्सती नहीं हुई थी, उसको इतना बुरा समझते हैं कि आजकल लोग फिर निकाह की तरफ ही नहीं जाते, वो कहते हैं मंगनियां करो और घूमो फिरो, मजे करो, तस्वीरें भी साथ बनवाओ और सब हल्ला गुल्ला भी करो, लेकिन निकाह नहीं करना हमने, कि निकाह के बाद हमें डर लगता है। तो वो तो हराम है इस तरह से किसी गैर महरम के साथ घूमना है। मंगनी के बाद जो भी ताल्लुकात एक लड़का और लड़की रखते हैं, मंगनी असल में कहते हैं, मंगनी बजाते खुद जायज है, मंगनी में कोई हरज नहीं है। मंगनी का मतलब जो वो समझा जाता है ना, खितबत निसा मंगनी को ही कहते हैं, तो मंगनी असल में खितबत निसा क्या होता है कि रिश्ता मांगना और दूसरे की तरफ से हाँ हो जाना, बस इतना होता है। अब हमने मंगनी को क्या बना लिया, खुद सोचे हम तो कहां तक पहुंच गए, मंगनी का मतलब ये समझ लेते हैं कि मियां बीवी बन गए, हालांकि उनका कोई आपस में ताल्लुक नहीं, बस रिश्ता मांगा गया और उन्होंने अपनी रजामंदी जाहिर कर दी, बस ये है मंगनी। इसलिए जब ये इस तरह की चीजें हम अपनी कल्चरल चीजें अंदर ले आते हैं ना कि भाई तलाक हो गई तो बस अब ये बहुत बड़ा हो गया, जबकि वो बच्ची उसी तरह है जैसे कि कोई और बिन ब्याही बच्ची है, लेकिन इतना उसको बुरा समझा जाता है कि उसकी वजह से लोग अब निकाह से भागते, लोग निकाह नहीं करना चाहते। यानी कि हमारी बेटी के ऊपर ऐसा कोई धब्बा ना लग जाए। लड़के वाले भी कहते हैं कि हमारा बेटा जो है ना वो ना इस तरह हो जाएगा, अभी कुछ हुआ भी नहीं और वो एक तलाक याफ्ता कहलाए। ये अगर हम अपने ये कल्चरल चीजों को एक साइड पे रखते ना तो बहुत बेहतर है। कहते हैं हम क्यों ऐसे करें, और बाज लोग अल्लाह ताला माफ करे हम सबको। और हमारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो तलाक याफ्ता औरतों से शादियां की, सिवाय एक हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला के और कोई भी कंवारी नहीं थी। बेवाओं से भी की, तलाक याफ्ता से भी की। तो अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें आर नहीं समझी तो आज देखें, मैं बोलना भी नहीं चाहती, मुझे अल्लाह से डर लगता है इस बात के ऊपर कि किस किस तरह के लोग नाम देते हैं और कहते हैं यूज्ड है। ये कैसी कैसी बात हम करते हैं और डरते नहीं है इस पे बोलते हुए। और सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए किसी लड़की को भी कहने से पहले, इस किस्म का नाम देने से पहले, कि नबी अलैहिस्सलाम ने तो फिर सब यूज्ड औरतों से ही शादियां की। अल्लाह ताला हमें माफ करे कि हम इतनी बुरी बात कहते हैं किसी के लिए और डरते भी नहीं है। तो ला जुनाह अलैकुम, तो तुम पे कोई गुनाह नहीं है। अगर इंसान ये सोच रहा है कि आगे जाके एक मसला और पड़ जाएगा, देखें ये तो अभी पहला स्टेप हुआ है। अगर पता ही चल रहा है यहाँ पे कि निभ नहीं सकती, तो बजाय उसको जबरदस्ती करके और उसको कहना कि नहीं अब तूने यहीं पे तेरी रुखसती हो के रहेगी और यहाँ पे तुमने फिर क्यों पहले की थी और ये कर, उससे बेहतर है, उसमें कोई गुनाह नहीं है इसमें, यानी कोई हरज नहीं है। इसको भी एक बहुत बड़ी चीज ना बना लिया जाएगा, कोई जुर्म हो गया कि अगर तुम निकाह तुम तलाक दे देते हो औरतों को जबकि तुमने उनको छुआ नहीं होता। औ तफरीदु लहुन्ना फरीदा, या तुमने मुकरर कर दिया उनके लिए कुछ मेहर, यानी तुमने उनके लिए मेहर भी नहीं मुकरर अभी किया हुआ था। बाज दफा ऐसे होता है कि मेहर होगा लेकिन अभी अमाउंट फिक्स नहीं की होती निकाह के वक्त में, क्योंकि मेहर के बगैर तो शादी नहीं हो सकती। तो मेहर अभी एग्जैक्ट अमाउंट एग्जैक्ट चीज फिक्स नहीं है। और मेहर में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, मेहर जायदाद भी हो सकता है, मेहर कैश भी हो सकता है, मेहर में जेवर भी हो सकता है। लेकिन याद रखें ये फिर उसका हो जाता है। बाज लोग लिखाते हैं मेहर के अंदर जेवर लिखवा दिया और उसके बाद क्या होता है, वो कहते हैं ये तो बाद में अगर तलाक हो गई ये तो जेवर हमारा था, हमने तुम्हें डाला था। ओ भाई तो आपने तो मेहर में लिखवाया था तो वो तो अब आपका नहीं है। मेहर उस औरत की मिल्कियत होता है। अच्छा, अब अगर कोई बहुत गरीब, जैसे हम अब सहाबा के जमाने में देखते हैं कि एक सहाबी इतने गरीब थे तो उनका निकाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि जाओ तुम अपने मेहर के लिए कुछ चीज लेकर आओ। वो कहते मेरे पास कुछ नहीं है। आपने फरमाया तुम जाओ ढूंढो कुछ तलाश करो, अगर लोहे की अंगूठी भी मिल जाती है तो वो भी मेहर मुकर्रर हो सकता है। यानी अब उनकी हालत इतनी वो है, इतनी मतलब हालात खराब हैं कि एक लोहे की अंगूठी भी नहीं उनको मिली। तो तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हें कोई कुरान याद है, उन्होंने फरमाया हाँ मुझे ये सूरतें याद है। आपने फरमाया फिर मैं इनके ऊपर ही तुम्हारा निकाह कर देता हूँ, यानी तुम अब ये अपनी बीवी को सिखाओगे। ये नहीं कि तुमने याद कर लिया तो बस काफी, ये तुम्हारे वो तो उन्होंने याद की ना, तुम्हारे अपनी बीवी को ये सिखाओगे, ये मेहर हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस चीज को आप सोचिए कि ये तो बड़ी पसंदीदा बात है और हम अब इसी के ऊपर मेहर, इसी को मेहर रखा करें कि कुरान सिखा दे कोई। अगर ऐसा ही होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कितना कुरान था, आप तो चलता फिरता कुरान थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी बीवियों का मेहर मुकरर किया किसी बीवी के साथ। ये हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात ऐसे कुछ नहीं थे कि बहुत कोई मालदार थे, बहुत कोई तिजारतें हो रही थी, बहुत आप सबको पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के हालात क्या थे। इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल दिया अपनी बीवियों को मेहर में, कभी ये नहीं कहा कि मैं अपने कुरान के बदले तुमसे शादी कर लेता हूँ। आजकल ये भी बहुत कॉमन हुआ है, अच्छे भले हैं, सब कुछ है, बहुत लग्जूरियस लाइफ गुजार रहे हैं, लेकिन क्या है मेहर जी वो हम ये सूरत याद कर लेते हैं तो ये मेरा ये मेहर है। क्यों, आप औरत का ये हक है, ये है जिसके ऊपर आदमी अपने लिए इस औरत को जायज करता है, इसके बेसिस के ऊपर आदमी उसकी शर्मगाह को अपने ऊपर हलाल करता है ये मेहर दे के। यानी एक तरह से एक टोकन है, एक तोहफा है उसके लिए। और ये अच्छी जान छुड़ाने की वो है कि नहीं जी हम तो इतना कुछ याद कर लेते हैं और वो हम, ये आप सरसर ने उस वक्त फरमाया जिस वक्त दूसरे सहाबी फकीर थे बिल्कुल, उनके पास कुछ नहीं था। क्योंकि आगे आ रहा है कि अलल मुसी कदरू अलल मुक्तिर कदरू, वो भी मेहर के उसमें भी आता है। तो आज जो मेहर रखा जाता है ना, ज्यादातर क्या रखा जाता है हमारे यहाँ, सबको पता है ये बात, क्या रखा जाता है, शरई मेहर। शरई मेहर 32 रुपए और पता नहीं 8 आने के क्या, 32 रुपए आजकल फकीर भी नहीं लेता। और ये हमने इसको शरई मेहर का नाम दिया हुआ, इसमें कुछ समझ नहीं आती, इसमें शरीयत कहां से आ गई। आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा गया कि आपका मेहर कितना था, तो फरमाया 12 ओकिया और एक निश। एक निश पूछा गया कितना है, तो एक निश हाफ ओकिया। तो एक ओकिया जो ना 3000 ग्राम का होता है, 3000 ग्राम का, जो ग्राम आप मेरे ख्याल में अब आप देख लेते, देख सकते हैं कि ये कितना तोला बनता है। हाल में मैंने निकाला था इसको कि 10 ग्राम का एक तोला होता है। तो इतनी चांदी या इतना, एक एक सहाबी थे, उन्होंने निकाह किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुमने मेहर रखा था, उन्होंने फरमाया हाँ, एक गुठली सोने की, ये जो गुठली होती है खजूर की गुठली, इसके जितना सोना, यानी इतना सा सोना एक गुठली के बराबर। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उम्मे हबीबा से निकाह किया था, तो उस वक्त नजाशी ने आपके मेहर में रखे थे 4000 दिरहम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों का 12 ओकिया तक तो उनका रखा ही मेहर। तो फरमाया कि अगर ऐसी औरतें हैं जिनका मेहर अभी मुकर्रर नहीं हुआ, अभी फिक्स नहीं हुई अमाउंट की कितना है, निकाह हो गया लेकिन अब आगे वो शादी यानी रुख्सती नहीं करना चाहता लड़का, तो वो तलाक दे सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। इसलिए ये कहा गया, ये अब औरतें सोचेंगी हाय ये तो कितनी बुरी बात कह दी गई, नहीं ये तो औरतों के हक में है, इसलिए क्योंकि अगर आदमी का दिल उसे उचाट हो रहा है अभी से, उसका दिल नहीं कर रहा तभी तो उसको तलाक देना चाहता है, या वो कहीं और इंटरेस्टेड हो गया या कुछ और है, तो बजाय इस बेचारी का एक बेगुनाह को एक उसमें फंसाया जाए, उसको खत्म कर दो यहीं पे ना, कि तुम आगे ले जाके फिर उसके साथ खत्म करो या उसको तंग करो बाद में। वह मत्तिउहुन्ना। अच्छा एक और भी रीजन होता है, बाज दफा वालदेन ही बड़े कुछ किसी लड़के की शादी जबरदस्ती निकाह कर देते हैं और वो लड़का नहीं राजी होता और वो तलाक देना चाहता है, वो भी एक सिनेरियो हो सकता है। वो मत्ती उन्ना, अब क्या करोगे, अब उनको मालो मता दो, इन इस लड़की को जिसको तुम तलाक दे रहे हो, अब मेहर तो मुकर्रर नहीं है लेकिन तुम्हें चाहिए कि इसको कुछ मता दो। मता क्या होता है, सामान, सामान्य जिंदगी, कुछ देर का फायदा देना, कुछ ना कुछ उनको दे के उनके साथ ताल्लुक खत्म करो। वो उसके घर में तो नहीं आई और रुख्सत तो नहीं करना उसको, लेकिन कुछ ना कुछ दो। आपने देखा पिछली पाली में भी, पहले भी औरतों के साथ क्या बात की गई और अब भी क्या कहा जा रहा है, कि कुछ ना कुछ उनको दे के भेजो। उस वक्त तो हमने जिनकी रुख्सती हो गई थी उनकी बात की, अब वो है जो बगैर रुख्सती के, तो वो तुम्हारे नाम के साथ जुड़ी रही, एक तुम्हारे नाम के पर बैठी रही, उसकी भी कितनी उम्मीदें होंगी, कितनी क्या होगी। तो अब तुम ऐसे ही तोड़ के आगे नहीं हो सकते, अब कुछ ना कुछ दो, और कितना दो, अब ये फिक्स नहीं किया गया मगर क्या बताया गया कितना देना चाहिए, अलल मूसी कदरहू वलल मुक्तिरी कदरहू, जो वुसत वाला है वो उसके मुताबिक दे और जो तंग दस्त है वो उसके मुताबिक दे। यानी जो जिसके साथ तुम्हारा एक ताल्लुक, ताल्लुक से मतलब है कि एक नाम तो जुड़ा ना, एक कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ था ना, तो उसको ऐसे ही नहीं अब तुम छोड़ दो, कुछ ना कुछ कॉम्पेंसेशन, और नहीं कुछ कॉम्पेंसेशन हो सकती तो कम से कम माल की सूरत में ये कॉम्पेंसेशन करो कि उसको दो कुछ। और इस सिलसिले में आता है कि हजरत हसन रजी अल्लाह तआला ने, ऐसे ही एक वाकया हुआ था, उन्होंने एक औरत को तलाक दी थी जिसके साथ अभी रुख्सती नहीं हुई थी उसकी, तो उन्होंने उसको 10,000, बाज जगह 20,000 का आता है कि इतना उसको तोहफे में दिया था। और काजी शुरह ने, उन्होंने भी किसी को 500 दिरहम दिए थे, इब्ने अब्बास कहते हैं अदना दर्जा ये है कि एक कपड़ों का जोड़ा तो दे के भेजो, अगर तुम्हारी नहीं ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं कुछ कर सकते तो एक कपड़ों का जोड़ा दे के भेजो। अब जो ज्यादा वुसत वाला है उसके उस जमाने में क्या करते थे, एक गुलाम दे देते थे। हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि आला दर्जे का कोई गुलाम खादिम दे दो, उससे कम क्या हो सकता है कि चांदी दे दो, उससे कम क्या हो सकता है कि कपड़ा दे दो। यानी अगर मालदार है तो गुलाम देते, अगर मुफलिस है तो कम से कम तीन कपड़े तो दे दे। और आज के जमाने में क्या हो सकता है, आला दर्जा क्या हो सकता है, कोई कोई गाड़ी दे दे, कोई उससे भी ज्यादा है तो कोई मकान किसी उसके नाम कर दे, कोई उससे भी ज्यादा है कोई जेवर दे दे, यानी इस तरह की कोई चीज उसको दे दी जाए, जो कम हैसियत वाले हैं वो कुछ चलो कोई कपड़े ही दे दे। लेकिन आप मुझे बताएं ये आयतें सिर्फ कुरान में पढ़ने के लिए या कभी प्रैक्टिस के लिए भी हैं? किसी को बताया हमने आज तक कि ये चीज अगर हो जाए तो ऐसे होना चाहिए, या किसी को पता भी है ये आजकल क्या होता है? हमने तो अपना ही एक इस्लाम बनाया बना, हमें इस्लाम की तो जरूरत नहीं। इतना ग्रज होता है, लो जी ऐसे उसको छोड़ रहे हैं, ये तो खुद ऐसी, ये तो खुद इस उसके अंदर 100 खराबियां निकाल देते हैं बैठे बिठाए। तो अब किसी को देने का सवाल तो दूर की बात है, या आपस में ही दोनों की किसी बात पे लड़ाई हुई, अब लड़का कह रहा है कि मैंने नहीं इसके साथ शादी करनी, जो भी है मैं नहीं, रुखसती रुखसत करके इसको नहीं लेकर आना, शादी से मेरा मतलब है रुखसती, अब निकाह तो हो चुका। अब दोनों के अंदर इतना ज्यादा आपस के अंदर हो गया, अब वो लड़का कहता है मैं क्यों दूं, या उसके घर वाले कहते हैं हम क्यों दें। नहीं, लेकिन एक औरत किसी के नाम पे बैठी रही है, उस वक्त हो सकता है उसको कितने रिश्ते आ रहे हैं, अब उसने सारे रिजेक्ट करके इसको अपनाया और ये अब छोड़ आए तो इसको कुछ ना कुछ देना है। ठीक है, वो जो इमोशनल टर्मोइल से गुजरती है उतना आदमी नहीं गुजरता जितनी कि औरत गुजरती है। तो उस सूरत के अंदर, उस वक्त के अंदर औरत के लिए, यानी जब उससे रिश्ता तोड़ा भी जा रहा है तो एक अच्छे तरीके से खत्म किया जाए, मताम बिल मारूफ, फायदा पहुंचाना है मारूफ तरीके से। मारूफ तरीका कौन सा होता है, जो सब में नो नो कि ये अच्छा ही तरीका है, यही शराफत का तकाजा है, ऐसे ही होना चाहिए ना। मतलब जैसे जो मुंह से है, जो वुसत वाला है वो उसके मुताबिक कोई चीज देता है तो सारे कहते हैं हाँ भाई वाकई ठीक किया उसने। अगर जो मूसी है, जो वुसत वाला है, वो एक कपड़ों का जोड़ा दे दे तो कोई मारूफ नहीं कहेगा उसको, ठीक है ना। इसी तरह मारूफ नहीं है ये कि अगर मुंह पे मारा जाए, उसको पर इल्जाम लगा के उसको बेइज्जत करके दिया जाए कि ये लो पकड़ो अपना, हमने तो पूरा कर दिया तुम्हारा, जो हमने तुम्हारे साथ किया था, अगर निकाह किया था छोड़ा है तो दे ये लो, ऐसे करके नहीं, मारूफ तरीके से, अच्छे तरीके से, भले तरीके के साथ, दूसरे की बुराइयां करके नहीं, दुनिया में उसको बदनाम करके नहीं, उसको रुसवा करके नहीं, गालियां दे के नहीं, मारूफ तरीके से मता दो। यानी हालांकि आदमी ने अभी उससे कुछ फायदा नहीं उठाया, रुखसती नहीं हुई, फायदा क्या उठाना, फिर भी क्या सिखाया इस्लाम ने, बताएं कौन सा और कोई दीन, कोई और कोई कहीं जगह पे चले जाए ऐसे अहकाम ला के दिखाए। ये जो औरत के लिए इस कदर कंपैशनेट है, इतनी ज्यादा औरत के लिए दर्दमंदी किसी और जगह नहीं है, कि उस बेचारी का दिल टूटा होगा तो उसको कोई हदिये दो, कोई तोहफे दो। तो ये हुक्म आने के बाद क्या फिर ये कोई बन सकता है कि कोई ये कहे कि ये ऐसी ऐसी थी, इसको तलाक ही होनी चाहिए थी, इसके तो इसने अपनी जुबान देखी है, इसने तो अपने देखे हैं, ये किया वो, नहीं बताया गया नहीं, जब तुम तलाक दे रहे हो तुमने अब उसको फायदा देना है। और हमारे हमारे इस्लाम में जो हमारे यहाँ राइज है, जो हमने बनाया हुआ इस्लाम अपना, खुद को मुसलमान कहते हैं लेकिन जो हमने इस्लाम अपने लिए बनाया हुआ ना उसमें क्या होता है वो सबको पता है, ये वाला पता ना हो, पता हो ना हो, वो सबको पता है क्या होता है, बताएं जब तलाक होती है और वो उसके बाद क्या किया जाता है, वो कहते हैं वो जो चीजें हमने तुम्हें दी थी ना वो वापस करो, बहन ने अंगूठी डाली थी उसको, बड़े भाई ने फलाना जेवर दिया था, माँ ने इतने बरी के, जो बरी तो नहीं उस वक्त, लेकिन जो भी गिफ्ट में जोड़े लेकर आई थी वो सारे वापस आ रहे होते हैं। यानी दे के तो क्या, भेजना या भेजना तो नहीं है, लेकिन देना तो क्या दूर की बात है, जो दिया होता है वो भी वापस ले लेते हैं। हालांकि मैंने आपको क्या बताया था कि गिफ्ट को वापस लेना क्या होता है, लेकिन वो भी वापस ले लेते हैं। उस वक्त तो बड़ा शौक था और उसके बाद सब खत्म। हक्कन अलल मोहसिनीन, ये हक के ऊपर एहसान करने वालों के, जो मोहसिन है। मोहसिन कौन होता है? जो हक से बढ़ के देने वाला होता है। क्योंकि अभी औरत का हक तो नहीं है ना कुछ लेने का, देखिए उससे कोई फायदा तो नहीं आदमी ने उठाया। लेकिन आपको देखिए मैंने बताई है मिसालें कि कितने बड़े बड़े लोगों ने कितने बड़े बड़े मता दिए। इसको कहते हैं मताए तलाक, मताए तलाक यानी तलाक पे जो फायदा दिया जाता है वो कितना बड़ा बड़ा दिया, कितने हजारों दिरहम दिए, कई 500 दिरहम दिए जा रहे हैं, कई गुलाम दिए जा रहे हैं। ये छोटी बात तो नहीं है। और हम देखें कि आज हम क्या करते हैं। तो ये है कि फिर उसके बाद कहना कि हम तो बहुत दीनदार हैं और हमारा अखलाक कितना अच्छा है और हम कितने वो हैं, अगर हम इनके ऊपर चलते ही नहीं है तो फिर हम कौन से इस्लाम के दावे करते हैं? अगर तुम्हारे ईमान और अखलाक में हुसन है ना, तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? फिर तुम्हें चाहिए कि तुम इस तरह का रवैया अपनाओ। अल्लाह ताला हमें सही समझने की तौफीक अता फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। तिलावत सुनिए।
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين.